लेक्चर नंबर 3। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमीचंद जी ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसके अनुसार पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंदी का कर्मकांड भाषा टीका लिखी और उसी का ये हिंदी अनुवाद हम यहाँ पढ़ रहे थे। प्रकृति समुत्कीर्तन में प्रकृतियों के नाम, उसका स्वरूप आदि का वर्णन यहाँ चल रहा है। हमने ये बात देखी कि जीव और कर्म अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में ही पाए जाते हैं और हर समय नए कर्मों का बंध भी होता है और पुराने कर्मों का उदय भी चल रहा है। हमने कर्म कहने से, सामान्य से कर्म कहने से उसमें सभी गर्भित हो जाते हैं। उसके घाती और अघाती भेद से दो भेद हो जाते हैं और घाती में भी चार और अघाती में भी चार भेद है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये घाती कर्म है और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये अघाती कर्म है। तो हमने हर एक कर्म का कार्य भी क्या होता है उसकी बात देखी थी। देखो, आयु और गति नाम कर्म, इसमें भेद है, इसमें बहुत घोटाला करते हैं। गति नाम कर्म हर समय बनता है। हाँ, मिथ्या दृष्टि को तो चारों गतियों में से कोई ना कोई बनती रहेगी। आयु कर्म एक भव में एक ही बार बनते, एक बार नहीं, एक आयु संबंधी उसका हो सकता है 8 बार में कभी बंधे, परंतु आयु का बंध कभी कभी होता है, गति का बंध हर समय हो रहा है। आयु का कार्य क्या है? विशिष्ट गति संबंधी उसकी स्थिति कायम रहेगा। नहीं समझे? जिस गति संबंधी उसका उदय है, ये मनुष्य गति संबंधी यानी मनुष्य आयु का उदय है, तो उसी गति में उसको रखता है, यानी उसका वहाँ जीवन चल रहा है, उस गति में, उस पर्याय रूप से उसका चल रहा है। गति नाम कर्म क्या है? एक पर्याय से अन्य पर्याय में ले जाना, यही सब उसका कार्य कहने में आता है। जैसे मनुष्य गति का उदय है तो कोई अन्य जीव मर गया, उसका उदय कब होगा? पूर्व भव से मरकर दूसरे पर्याय में उसने जन्म धारण किया, जन्म ने उसके विग्रह गति में ही आ गया, तो उसका गति नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है। यानी पर्याय से पर्यायांतर में ले जाना, ऐसा उसका कार्य कहने में आता है। जो गति चल रही है तो पूरे लाइफ टाइम तक उसी गति का उदय होगा, उसमें कोई अन्य गति का उदय नहीं होगा, उसी आयु का उदय होगा। बंध अलग अलग हो सकता है, जिस आयु का उदय है, जिस गति का उदय, वो तो वही का वही चलेगा। ख्याल में आते हैं ये बातें? यानी ये कुछ विशेषताएं है जिसमें कन्फ्यूजन भी बहुत बार होता है, क्योंकि जब गति की बात आती है बंध की और आयु के बंध की बात आती है तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। सहनन के बारे में हमने देखे थे, 6 सहनन की बात भी देखी थी, हरेक का कार्य स्वरूप देखा था। उसमें कुछ विशेषताएं 64 पृष्ठ पर मैं दोबारा इसको बताना चाहती हूँ। 29 नंबर की गाथा की टीका, पेज नंबर 64। हाँ, आपका ये प्रश्न है, चरम शरीरी को गति का बंध होगा कि नहीं होगा? अभी आप ही कह सकते हैं। क्या कहते चिन्ना में? आप नहीं कह रहे। गति का बंध हर समय चलेगा, 8वें गुणस्थान तक चलेगा, आयु नहीं बांधेगा उसका। गति का बंध तो उनके भी चल रहा है, चरम शरीरी यानी मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही वो मुक्त होने वाला है। अन्य कोई गति में चरम शरीरी नहीं होगा जी, तो सम्यक दृष्टि है तो जब से समय कोई तो बाद में समय भी होगा, मिथ्या तो में जन्म लेकर, परंतु जब से समय दर्शन प्राप्त किया है तो वो देवगति का बंध करेगा। कब तक? आठवें गुणस्थान तक। अभी आपका ये विषय नहीं हुआ है, हो जाएगा। कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृतियाँ बनती है, कहाँ तक बनती है, उसका जब विषय हो जाएगा हम आगे चलकर, तब ये बातें और आपको स्पष्ट रूप से ख्याल में आ जाएगी। गति का बंध तो होता ही उसको। ये सहनन की कुछ विशेषताएं हम यहाँ देखना चाहते हैं 64 पेज पर। देखो, 6 प्रकार के सहनन हमने देखे थे, याद है ना? कौन से कौन से? वज्र, वृषभ, नाराज सहनन, फिर वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलित सहनन और असंप्राप्त वाटिका सहनन। अब उसके संबंध में कुछ विशेषताएं बता रहे हैं हम। देखो, हम कर्मभूमि के अभी पंचम काल के जो जीव है, नीचे के 3 सहनन हो गए, ऊपर के नहीं हो गए। स्त्रियों को तो ऐसे भी, कर्मभूमि की स्त्रियां चौथे काल की भी क्यों ना हो, नीचे के 3 सहनन होते हैं। अभी श्रेणी चढ़ने के लिए कौन कौन सी क्या क्या आवश्यक है, आवश्यकता सहनन की, उसके ऊपर ये सारे नियम है। स्त्री को क्यों नहीं मोक्ष होता है? आजकल तो शनि का भी दर्शन करते तो मोक्ष होने में क्या हर्ज है? इक्वल, हाँ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ कर्णानियों के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं, निमित्त वो कुछ नहीं कराते, वो सहनन से कोई मोक्ष नहीं होता है, परंतु उन निमित्तों की तरफ देखकर हम कार्य का अनुमान लगा सकते हैं। निमित्त कार्य में कुछ नहीं कर रहा, उसकी उपस्थिति है, नहीं समझे? जैसे सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा होगी तो समय दर्शन होगा, परंतु अभी उसको समय दर्शन है कि नहीं, परंतु उसके बाद छोड़ दो, जो खुदेवादी की श्रद्धा चल रही है तो उस निमित्त को देखकर हम नक्की कर कह सकते हैं ना कि यहाँ समय दर्शन नहीं हो सकता। लोग पूछते हैं ये विवेकानंद का था कि नहीं, वो तो परमहंस को था कि नहीं समय दर्शन, तो हम उनकी ईश्वर संबंधी क्या मान्यता थी ये नक्की कर सकते हैं, तो उनको समय दर्शन था कि नहीं था ये हम बता सकते हैं। ख्याल में? अभी यहाँ कुछ विशेष नियम बता रहे हैं। 64 पेज पर लास्ट पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ, असंप्राप्त त्रिपाटिका सहन। से संयुक्त जीव स्वर्ग में उपजे तो सौधर्म युगल से लेकर लांत युगल पर्यंत 4 युगलों में उपजता है, यानी वहां तक उपजता है, यानी वो भौनतिक में नहीं जाता, वो बात नहीं कह रहे कहां तक उसका जन्म हो सकता है, उसकी बात है। देखो, सौधर्म ईशान पहला युगल कहला है, सनत कुमार महेंद्र दूसरा युगल, यानी तीसरा चौथा स्वर्ग, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतो काकिष्ठ, तो वहां तक छठे नंबर का जो सहनन है वे जीव वहां तक उत्पन्न हो सकते हैं। उसके ऊपर 2 युगलों में शतार युगल तक, यानी शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार, वहां कीलित सहनन युक्त जीव उत्पन्न होते, यानी वो कीलित वाले नीचे से वहां तक तक की वजह कहां तक उत्पन्न होते हैं उसकी मर्यादा है, नीचे नहीं होते वो बात नहीं बता रहे। उसके ऊपर 2 युगलों में आरण अच्युत तक, यानी आनत प्राणत, आरण और अच्युत तक अर्ध नाराज सहनन युक्त जीव उपजता है। अब 65 पेज पर वो ऊपर के 3 सहनन है, नाराज, वज्र नाराज और वज्रषभ नाराज, इन 3 सहनन वाले जीव 9 ग्रहवेग तक उपजते हैं, यानी इसका अर्थ समझते हैं, अभी पंचम काल का कोई भी जीव ग्रहवेग में नहीं जाएगा। वज्र नाराज और वज्रषभ नाराज, इन 2 सहनन वाले जीव 9 अनुदिश विमान तक उपजते हैं, और वज्रषभ नाराज 1 सहनन वाला जीव 5 अनुत्तर विमानवासी देवों तक उपजता है। तक यानी वो नीचे से सौधर्म से लेकर कहीं पर भी उत्पन्न होते, पर वहां जाने वाले ये उत्कृष्ट सहनन वाले ही वहां चले जाएंगे। अब नरक में उपजते तो कहाँ उत्पन्न होते हो, नीचे की गाथा में बताया, देखो 31 नंबर की टीका। छह सहन युक्त संगी जीव नरक में उपजते हैं तो मेघा नामक तीसरी पृथ्वी तक उपजते हैं। संगी क्यों कहा, असंगी जीव अगर उत्पन्न होता तो पहले ही नरक में उत्पन्न होगा, वो नीचे के नरकों में नहीं जा सकता। और संप्राप्त सुपाटी का बिना शेष पांच सहन वाले जीव अरिष्टा नामक पांचवी पृथ्वी तक उपजते हैं। और असंप्राप्त सुपाटिका और किलित बिना चार सहनन वाले जीव मघवी नामक छठवी पृथ्वी तक उपजते हैं। और एक वज्रषभ नाराज सहनन वाले जीव ही माघवी नामक सातवी पृथ्वी तक उपजते हैं। यानी सातवी पृथ्वी में जन्म लेने वाला यहाँ का जो कोई तीर्यंश है, तीर्यंश में उमत्स्य को लेते हैं, और मनुष्य जो वज्रषभ नाराज सहनन वाले है और वो परिणाम के कारण वहां उपज सकते हैं। नीचे भी नियम दिखे, कर्म भूमि में महिला अर्थात स्त्रियों के अर्धनाराज किलित और असंप्राप्त सुपाटी का इन तीन सहन ही का उदय है। आदि के वज्रषभ नाराज आदि तीन सहन नहीं होते, ऐसा जिनदेव ने कहा है। जब वो उदय की विच्छित आदि बातें हम आगे चलकर देखेंगे तो ये पता चलेगा उपशम श्रेणी चढ़ने वालों को भी उत्तम तीन सहनन वाले ही उपशम श्रेणी चढ़ सकते, और क्षपक श्रेणी वाला तो वो वज्रषभ नाराज वाला ही होना चाहिए। तो अभी वर्तमान में मुनियों यानी पुरुषों को भी सातवें गुणस्थान तक ही पुरुषार्थ क्यों है, क्योंकि ऊपर के तीन सहनन अभी नहीं पाए जाते, तो अभी कोई उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी चढ़ने की बात ही नहीं हो सकती। कर्मों की जो कुछ विशेष नियम है, कौन कहाँ उत्पन्न हो सकता है, कौन कहाँ कौन सा पुरुषार्थ कर सकता है, ये सारे नियम के अनुसार ये सभी बातें होती हैं। इसमें से कुछ कुछ नियम कभी कभी बताएंगे आपको, एक साथ सभी नियम नहीं बताएंगे। अभी हमने सभी नाम देखे थे, नाम कर्म के भी 93 भेद देखे थे हमने। ये भी बात हमने देखी थी कि 148 जो प्रकृतियां हैं उसमें से अगर जिसको अभेद कहेंगे हम, भेद करके हम 148 देखते हैं, और अभेद रूप में हमने क्या शरीर बंधन और संघार मिलकर 5 और 5 10 काम करेंगे, और वो वर्णादि 20 के बदले हमने 4 किया तो 26 कम करके 148 में से 26 माइनस करेंगे 122 का हिसाब हो जाता है। उसमें दो प्रकृतियां बनती नहीं है, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति, तो बंधने योग्य है 120 प्रकृतियां। ये तो क्लियर हो ना, यहां तक अपना विषय हुआ था, अभी उसके आगे बढ़ेंगे हम। इसको भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा कहते हैं, विवक्षा ने कहने की जो पद्धति। अब जो घाती कर्म है उसके अन्य दो प्रकार से भेद किए जाते हैं। घाती कर्म कौन कौन से है, ज्ञानावरण दर्शनावरण मौनी और अंतराय, उसमें दो भेद किए जाते हैं, सर्वघाती और देशघाती। प्रकृतियों के भेद बता रही हूं मैं अभी, सर्वघाती प्रकृतियां और देशघाती प्रकृतियां। सर्वघाती का अर्थ क्या है, अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात करती है, और देशघाती है उसका उदय भी होवे और जो प्रतिपक्ष जो गुण है उसका कार्य भी कुछ चालू रहे, उसको कहेंगे प्रतिपक्ष। जैसे ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इनमें से केवल ज्ञानावरण ये सर्वघाती प्रकृति है, तो किसका घात करती है, यानी केवल ज्ञान का। अभी हम कथन ऐसा ही करेंगे, वो कोई किसी का घात नहीं कर सकता, वो जड़ है, वो बात हमारे ध्यान में है, ख्याल में है, ये कर्णनियोग की भाषा है। अपना उसका प्रतिपक्ष क्या है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान वहां नहीं हो रहा है। क्या वो मति ज्ञान को रोक सकता है, हम आप सबको केवल ज्ञानावरण का उदय है, वो हमारे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को नहीं रोक रहा है, वो अवधि मन परिये को भी नहीं रोकेगा, उसका स्पेसिफिक कार्य किसमें है, केवल ज्ञान नहीं हो रही, ये उसका कार्य। अब अन्य जो 4 जो है वो कैसे देशघाती प्रकृतियां, यानी उसका उदय भी होवे और उस ज्ञान की प्रकटता भी हो। जैसे मति ज्ञानावरण का हमारा आपका सबका उदय चल रहा है, तो उदय चल रहा है तो हमारा मति ज्ञान प्रकट है ना। अभी उसकी अवस्था सूक्ष्म रूप कही जाती है, परंतु वहां तो उसका उदय तो चल ही रहा है। किस रूप से चल रहा है उसके, हम देशघाती रूप से चल रहा है ऐसा हम कहेंगे उसके। तो ये जो चार प्रकृतियां उसको क्या कहेंगे, देशघाती प्रकृति। और केवल ज्ञानावरण को क्या कहेंगे, सर्वघाती प्रकृति। तो ज्ञानावरण में हमने देख लिया, अब दर्शनावरण की बात करते हैं। अवधि ज्ञान, हाँ आपका प्रश्न है तो अवधि ज्ञान अभी हमको नहीं है, तो वो देशघाती है कि सर्वघाती है। तो देखो एक विशेषता और है उसमें, जो सर्वघाती प्रकृतियां है उसके जो स्पर्धक कहने में आते, स्पर्धक कहने अभी परमाणु की ग्रुप ना समझो, अभी हमने वो वर्ग वर्गना स्पर्धक उसकी डिटेल्स नहीं देखी, देखेंगे। यानी उसके जो परमाणु है वो कैसा पूरा घात करने वाले हैं, उसके स्पर्धक सर्वघाती है। फिर से सुनना, सर्वघाती प्रकृतियों के सभी स्पर्धक, स्पर्धक क्या बताते हैं, अनुभाव को बताते हैं। अनुभाव यानी फलदान शक्ति, उस किस रूप से फल मिलता है, सर पूरा घात करे ऐसा फल मिलता है। तो उसके सभी स्पर्धक कैसे हैं, सर्वघाती। जो जो देशघाती प्रकृतियां हैं, अभी देखो कभी मैं प्रकृति कह रही हूँ कभी स्पर्धक कह रही हूँ, जो जो देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें दो प्रकार के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। आपका प्रश्न था ना, अवधि ज्ञान अभी हमें नहीं है तो क्या समझना, अवधि ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है परंतु तो अभी हमारा सर्वघाती का उदय चल रहा है। मन पर ज्ञानावरण उसका वो है तो देशघाती प्रकृति, हमारा कैसा उदय चल रहा है, सर्वघाती रूप से उदय चल रहा है। जिन मुनियों को या जिनको चौथे गुणस्थान से जिसको अवधि ज्ञान है उसको क्या होगा, देशघाती का उदय रहेगा, सर्वघाती का उदय उनका नहीं रहेगा, यानी उनको सूक्ष्म रूप अवस्था पाई जाती। और जिनको, जिन मुनियों को मनोपर्य ज्ञान है उनका कैसा उदय चलेगा, देशघाती रूप से उदय चलेगा। तो केवल ज्ञान का देशघाती का उदय होता होगा कि नहीं, कभी वो सर्वघाती प्रकृति है और उसके सभी स्पर्धक कितना भी मंद क्यों ना हो वो सर्वघाती ही रहता है, वो देशघाती रूप नहीं होता। ये बात हो गई ज्ञानावरण की। अब दर्शनावरण में देखते हैं, दर्शनावरण की टोटल कितनी देखी हमने, नौ देखी। तो उसमें पांच तो निद्रा है, स्थान वृद्धि निद्रा, निद्रा प्रचला, प्रचला निद्रा और प्रचला, और एक है केवल दर्शनावरण। ये छह प्रकृति है वो सर्वघाती है। तो ये पांच प्रकार की निद्रा किसका घात करती है, बोलो नीरज भाई।
निद्रा का,
निद्रा का उसका प्रतिपक्षी कौन है, जागृत अवस्था। निद्रा का नहीं, निद्रा लाती है, जागृत अवस्था का नाश होता है, नहीं तो दर्शन गुण कार्य नहीं करता ऐसा मानना पड़ेगा। छह आठ घंटे हम सो गए तो दर्शन गुण को भी आराम है और ज्ञान गुण को भी आराम मिलेगा, क्यों ऐसा नहीं है। उनका कार्य कुछ चल रहा है, परंतु हम जब निद्रा है तब जागृत अवस्था का घात हो रहा है। और केवल दर्शनावरण में तो समझते ही है, बाकी कौन रहेंगे, तीन, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण। ये कैसी है, देशघाती प्रकृतियां है। तो उसमें स्पर्धक कौन से हो गए, दोनों हो गए, दोनों प्रकार के उसमें स्पर्धक पाए। अभी एक इंद्रिय जीवों को चक्षु दर्शनावरण का कैसा उदय होगा, सर्वघाती। ये कितना आसान है, ऐसे सहज, जैसे जिस पर्याय में जीव है, जैसे उसकी योग्यता है, जितने इंद्रिया वगैरह बननी है जिसका सूक्ष्म है ज्ञान का, वैसे वैसे उसका ये सहज रूप से सुमेल होता है उसके कर्मों के उदय वगैरह। तो ये हमने दर्शनावरण की बात देखी। मन पर्य का दर्शन इसलिए नहीं लिया है अलग से क्योंकि उसमें अचक्षु दर्शन लेते हैं, एक बात, और दूसरी मति ज्ञान पूर्वक मन पर्य ज्ञान होता है, इसलिए मति ज्ञान के पूर्व में दर्शन उपयोग हुआ था, उसके बाद मति ज्ञान हुआ था और उसके बाद मन पर्य ज्ञान होता है। इसलिए उसको अलग से दर्शन नहीं लेते। अभी हम देशघाती सर्वघाती का यहाँ देख रहे थे, बंटवारा। मोहिनी की बात करते हैं। मोहिनी में दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां देखी थी, याद है ना? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अभी दर्शन मोहिनी किसका, उसका प्रतिपक्षी कौन है? सम्यक तो नहीं होने देता, तो मिथ्यात्व ये सर्वघाती है। सम्यक मिथ्यात्व वो भी सर्वघाती है और सम्यक प्रकृति देशघाती। पर यहाँ एक विशेषता है, जो देशघाती रूप से बनती है उसमें देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। जैसे अभी हमने मध्यान वगैरह देखा, पर ये सम्यक प्रकृति ऐसी स्पेशल प्रकृति है कि मिथ्यात्व का अनुभाग घटकर वो बनी है। वो प्रकृति भी देशघाती है और उसके स्पर्धक भी देशघाती है। ये एक प्रकृति में ये विशेषता है। सम्यक प्रकृति देशघाती प्रकृति है और उसके सभी स्पर्धक देशघाती ही है, उसमें सर्वघाती स्पर्धक नहीं होते। ये बात, ये दर्शन मुनि की बात होगी ना। अभी चारित्र मुनि में लगाते हैं, अनंतानुबंधी के चारों, वो सर्वघाती है, पूरा घात करते किसका? सम्यक होता, सम्यक चारित्र भी नहीं होने देते और सम्यक, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ साथ उसका कार्य चलता है। अप्रत्याख्यानावरण, वो किंचित मात्र भी, अ यानी किंचित थोड़ा, प्रत्याख्यान ने त्याग, आवरण ने नहीं होने देते, तो हम कहेंगे वो भी सर्वघाती। प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान वो सकल संयम, आवरण ने नहीं होने देते, वो प्रत्याख्यानावरण है, वो भी सर्वघाती। संज्वलन कैसी है? देशघाती। अब उसमें स्पर्धक कैसे हो गए? दोनों हो गए, सर्वघाती भी और देशघाती भी। आपका अभी संज्वलन का कैसा उदय चल रहा है? सर्वघाती रूप से चल रहा है। और मुनि जो छठे सातवें गुण स्थान वर्ती है, उनके देशघाती रूप से उदय चल रहा है उनका। एक बार उसका ट्रिक समझ में आए, बहुत आसान है और कुछ गड़बड़ी नहीं है बहुत ज्यादा उसमें। यानी जब ये देशघाती सर्वघाती का स्वरूप समझेंगे हम, तो क्षोभम की परिभाषा भी अच्छी तरह से समझ में आती है। कर्मों में जो क्षोभम रूप अवस्था है ना, वो क्षोभम के भाव आप जब गिनना कितने होते हैं, सारे ही देशघाती प्रकृतियों पर घटित हो गए। इस पांच भावों की जो बात आती है ना, क्षायिक भाव घटित करना है तो चार घाती कर्मों पर घटित करो, तो सभी नौ क्षायिक भाव आ जाते हैं। नाम तो मालूम है ना आपको, ज्ञानावरण के क्षय से, पांचों ज्ञानावरण का क्षय होता है, क्षायिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्रकट हुआ। नौ के नौ दर्शनावरण का जहां क्षय पाया जाता है, वहां क्षायिक दर्शन यानी अनंत दर्शन पाया जाता है। अब मोहिनी में दर्शन मोहिनी का क्षय है, क्षायिक सम्यक्त्व है। चारित्र मोहिनी का क्षय है, क्षायिक चारित्र है। और बाकी जो दानादि जो पांच है, हाँ, अंतराय के क्षय से पांच क्षायिक दान लाभ भोग भोग होते हैं। यानी सभी जो क्षायिक भाव है वो चारों घाती कर्मों पर घटित होते हैं। क्षौक्षमिक भाव घटित कराना है आपको। क्षौक्षम की परिभाषा याद है ना? देखो अभी हमने सर्वघाती और देशघाती स्पर्धकों की बात देखी थी। जो देशघाती प्रकृतियां है उनमें दो प्रकार के स्पर्धक होते, कौन से? सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक। अब देखो बनते समय तो देश सर्वघाती और देशघाती दोनों बनते, जो जो देशघाती प्रकृतियां है बनने वाली उसमें सर्वघाती भी बंदे देशघाती भी बंदे, सत्ता में पड़े रहे तो भी सर्वघाती देशघाती दोनों ही है। उनकी जो निषेक रचना होती है, निषेक ने एक के ऊपर एक जो निषेक हम बताएंगे अभी आपको, तो उनमें भी वर्तमान समय छोड़कर दूसरे समय से लेकर सत्ता में सर्वत्र वो सर्वघाती देशघाती दोनों पड़े हैं। उदय का समय आता है वो सर्वघाती है, वो देशघाती टर्न होकर उदय में आते हैं, तो उसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। परमाणु तब उदय में आ रहे हैं परंतु वो अपने सर्वघाती रूप से नहीं आते हुए देशघाती रूप से टर्न होकर उदय में आएंगे, तो उसको कहते हैं सर्वघाती वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। तो भविष्य में क्या पोजीशन है उनकी? भविष्यकालीन 19 स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, उदय में नहीं आना वही उनका उपशम है। तो उदय तो चलेगा ना, देशघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसी जहां अवस्था होती है उसको कहेंगे क्षोपशम। अभी जो जो आपने देशघाती प्रकृतियां देखी है उन पर क्षोपशम भाव घटित करेंगे तो नहीं तो फिर हमको क्या बहुत याद करना पड़ता है क्षोपशम भाव गिनो, अभी 18 भाव गिनो, है ना। अब यहाँ जो चार ज्ञानावरण है जो देशघाती प्रकृतियां हैं उनका क्षोपशम हो जाए तो चार जो सम्यक ज्ञान है तो वो चार ज्ञान कहेंगे, और जो मिथ्या कुज्ञान है कुमति कुशुत कुअधि तीन अज्ञान कहेंगे। कौन से क्षोपशमी भाव है? तीन अज्ञान और चार ज्ञान, सात तो यहीं पर हो गए है ना। दर्शनावरण में लगा लो, अभी तीन हो जाएगी ना, चक्षु चक्षु और अवधि दर्शन, वो भी क्षोपशमी भाव हो गए। अब मोहनियम में घटा दो, क्षोपशम सम्यक तो है, चारित्र मोहनियम में घटाना है तो संयमा संयम एक और क्षोपशम चारित्र, ये दो, और बाकी जो अंतराय में हमने देखे थे पहले पांच अंतराय उसमें भी क्षोपशम घटित होता है, कितने हो गए? हो गए ना 18। यानी इस विधि से हम लोग आसानी से वो बात समझ में आ जाती है। तो अभी तो हम मोहिनी की बात हमने देखी, उसमें चार कषाय की बात देखी, नौ कषाय जो है वो तो देशघाती प्रकृतियां है।
पंचम गुणस्थान वाले को भी संज्वलन कषाय का सर्वघाती स्पर्श,
किसको?
पंचम गुणस्थान वाले को।
हाँ, पंचम घाती, पंचम गुणस्थान वाले को संज्वलन का तो सर्वघाती ही
है, तो भी इसको क्षोपशम भाव घटित करते हैं।
क्षोभ क्योंकि संयम और असंयम दोनों है, संयम और असंयम दोनों है, और वहां पर भी उसका भी देशघातीकरण चालू हो जाता है वहां पर भी। देखो प्रतिपक्ष का पूरा घात नहीं करता ऐसा है ना वहां पर, यानी वहां संयम का पूरा ही घात हो रहा है, संयमा संयम का घात नहीं हो रहा है। प्रत्याख्यानावरण के उदय में चारित्र का यानी संयम का घात हो रहा है, संयमा संयम का नहीं। तो संयम और असंयम मिश्र भाव है वहां पर, इसलिए क्षोक्षम घटित करते हैं। तो ये हमने ये देशघाती और सर्वघाती प्रकृतियों का एक टेबल 79 पृष्ठ पर है, 79 पेज पर। देखो अभी जो हमने देखे ना गिने वही सभी यहां बताए, ज्ञानावरण में देशघाती कौन सी और सर्वघाती कौन सी है, दर्शनावरण में कौन कौन सी है, मोहनीय में कौन कौन सी है, और अंतराय तो सारी ही देशघाती प्रकृतियां है। ये पूरा ये अभी हमने देखा है वही टेबल के रूप में यहाँ पर बता दिया। योग यानी टोटल, वो योग वाला वो नहीं सम, बंध का कारण वाला योग नहीं लेना यहाँ पर। हाँ, उसका जोड़, योग यानी जोड़, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अच्छा पूछ लेना कोई नहीं समझे तो। देखो अभी इसमें भी ये सर्वघाती देशघाती की चर्चा आई है तो यहीं पर कुछ बातें बताएंगे कि इसमें वो तो आगे आने वाली ही बातें हैं, परंतु ये जो स्पर्धक है ना उनको नाम देकर समझाने की पद्धति है। जैसे घाती कर्मों के जो स्पर्धक है अत्यंत मंद वाले उसको कहेंगे लता भाग वाले, फिर और जो तीव्र है तो दारू भाग वाले, अस्थि वाले और शैल वाले, ऐसे अघाती में भी नाम पुण्य प्रकृतियों के जुदे और पाप प्रकृतियों के जुदे। ये बात आगे आने वाली है, जब आएगी तब उसकी चर्चा विशेष करेंगे। पुण्य प्रकृतियों के नाम मालूम है? गुड़, खान, शर्करा और अमृत। और पाप प्रकृतियों के? नीम, कांजे, विष और हलार। एक एक में अनंत अनंत होते हैं, परंतु चार नाम देकर उसकी समझाने की पद्धति है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने देखे यहाँ पर प्रकृति वगैरह देखे थे तो उसमें अभी हमको प्रशस्त प्रकृतियां और अप्रशस्त प्रकृतियां, जिसको हम कहेंगे शुभ कर्म, यानी शुभ प्रकृति, अपन शुभ नाम नहीं देंगे क्योंकि शुभ नाम वाली एक नाम कर्म की जुदी प्रकृति है, इसलिए उसको प्रशस्त प्रकृतियां और अप्रशस्त प्रकृतियां कहेंगे, यानी पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतियां। प्रशस्त यानी पुण्य प्रकृतियां और अप्रशस्त यानी पाप प्रकृतियां। देखो पुण्य और पाप ये कर्मों के भेद है, पर जिन परिणामों से पुण्य प्रकृतियां बनती उनको भी पुण्य कह देते हैं। हम तो जीवों के परिणामों में पुण्य पाप लगाते हैं ना, और जिन परिणामों से पाप प्रकृतियां बनती उसको पाप कह देते हैं। तो उनके यहां भेद बताए हैं 80 पृष्ठ पर आना है। क्योंकि पुण्य पाप वगैरह प्रकृतियां क्यों जाननी, क्योंकि आगे चलकर इसका कुछ विवेचन आने वाला है। अभी तो केवल हम प्रकृतियों के नाम उनके भेद इतनी चर्चा कर रहे हैं, इस संबंधी जो विशेषता है या कहां कौन से बंध या उदय रूपते उसकी चर्चा तो आगे आएगी। अभी यहाँ उसके नाम देखेंगे, याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं रहा तो और अच्छा है। देखो आसानी, एक बात तो आसान है कि जो घाती कर्म है सभी पाप रूप है, सभी अप्रशस्त है, वो 47 के 47 अप्रशस्त में डाल दी। अब जो अघाती है उसमें दो दो भेद करने हैं, उसमें पुण्य रूप और पाप रूप देखना है, बस इतना ही है। वेदनीय में एक साता वेदनीय वो प्रशस्त है, असाता वेदनीय वो अप्रशस्त। आयु में विशेषता है, 3 आयु प्रशस्त में ली है, देवायु मनुष्यायु तिर्यंचायु, तीनों को प्रशस्त कहा है, और नरकायु ही अप्रशस्त है। गति में ऐसा नहीं है, गति में तिर्यंच गति को अप्रशस्त में डाला है। ऐसा कंफ्यूजन होता है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो आयु में नियम क्या है, जो ये 3 शुभ आयु है ना, तो मंद परिणाम है, मंद कषाय में लंबी आयु बनती है। कौन सी? मनुष्यायु तिर्यंचायु और देवायु। मंद परिणाम है, कषाय मंद है यानी पुण्य परिणाम है, तो वहां लंबी आयु बनती है, और संकलेश परिणामों में वो आयु कम बनती, छोटी बनती है। 3 आयु के बारे में ये नियम है, अन्यथा बाकी सभी कर्मों में नियम क्या है, शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, जहां संकलेश है वहां बंधन स्थिति बंध ज्यादा होता है, स्थिति का बंध ज्यादा है, और जहां विशुद्ध यानी मंद परिणाम है वहां स्थिति कम बनती है। ये सभी में लागू होता है। फिर से 3 आयु को छोड़ दो, इनको छोड़कर रूल क्या है, जहां मंद परिणाम है वहां स्थिति बंध कम होता है, जहां तीव्र यानी तीव्र कषाय है स्थिति बंध बड़ा होता है, लंबा होता है, अधिक स्थिति बनती है। कर्मों की स्थिति बंधना अधिक ये कुछ अच्छी बात नहीं है, भले वो प्रशस्त भी क्यों कर्म ना हो। जहां संकलेश ज्यादा है वहां उसकी स्थिति भी ज्यादा बंधेगी। तो तीर्थंकर प्रकृति भी संकलेश परिणामों में बंधेगी कि नहीं किसी के हा? एक बार बंधना शुरू होती है तो कायम बनती रहती है। चौथे गुणस्थान वाले को संकलेश नहीं होगी उसके यथायोग्य, जो नरक के सम्मुख होता है ना, अभी मिथ्या तो में जाने वाला है एक अंतर्मूर्त के लिए, और मरकर फिर दूसरे या तीसरे नरक में उत्पन्न होने वाला है, वहां उसके संकलेश परिणाम मैक्सिमम है, उस समय तीर्थंकर प्रकृति की भी स्थिति ज्यादा बंधेगी। अंतर कोड़ाकोड़ी से ज्यादा नहीं बंधेगी, परंतु कंपेरिटिवली अन्य जीवों से उसकी स्थिति भी ज्यादा बंधेगी। हमने रूल बताया था, जहां संकलेश ज्यादा है वहां स्थिति लंबी बनती है, जहां विशुद्धि ज्यादा है वहां स्थिति कम बनती है। जब स्थिति बंध के प्रकरण में हमने इसको फिर दोबारा देखेंगे, अभी तो हम कुछ कुछ आपको नियम बता रहे हैं यहाँ पर, अभी देखेंगे यहाँ पर। तो ये पुण्य प्रकृतियां हमने देख रहे थे हम, आयु में 3 और 1। अभी नाम कर्म में बहुत प्रकृतियां हैं ना, उसको कैसे गिनना, तो हमने आपको ये 62 नंबर का पेज निकाला, देखो उसमें से हम आपको बताएंगे विभाजन करके। देखो गति नाम कर्म हमने देखा था, उसमें 2 और 2 का विभाजन होगा, 2 गतियां प्रशस्त है, 2 गतियां अप्रशस्त। कौन सी प्रशस्त होगी? मनुष्य गति और देवगति प्रशस्त है, तिर्यंच गति और नर गति अप्रशस्त। उसके बाद जाति, जाति समझते हैं, एकेंद्रिय इंद्रिय तिंद्रिय चतुरिंद्रिय, ये 4 ही अप्रशस्त है, पंचेंद्रिय जाति ये प्रशस्त है। शरीर में कौन सा अप्रशस्त है? 5 प्रशस्त में लेना, शरीर सभी प्रशस्त में लेना। देखो देखो अभी ये आपके सामने चार है, 80 पेज पर। देखो 80 पेज निकालना, 42 की टीका, सात आवेदनियां हमने देख लिया, तिरंच मनुष्य देवायु भी देख ली, प्रशस्त प्रकृति, वहां उन्होंने गोत्र पहले किया, फिर अभी गति में देखो, मनुष्य गति और उसका गत्यानुकूल, देव गति और गत्यानुकूल की प्रशस्त में लिए ना, पंचेंद्रिय जाति हमने भी गिनी थी अभी, अब शरीरों में पांचों शरीरों को लिया, सारे प्रशस्त है, पांच बंधन पांच संगन सभी तीनों अंगों पांच प्रशस्त में ले लेना। वर्ण गंध रस स्पर्श में दो दो करना विभाजन, वो प्रशस्त भी होते हैं और अप्रशस्त भी होते हैं, तो प्रशस्त में भी गिनेंगे, अप्रशस्त में फिर इनको गिनेंगे। उसके बाद जो छह संस्थान है उसमें से पहला जो नाम लेते हैं हम समचतुर्थ संस्थान, वो प्रशस्त है, बाकी पांच अप्रशस्त है। सहनन में जो पहला नाम लेते हैं कौन सा, वज्र वृषभ नाराज सहन है, वो प्रशस्त है, बाकी पांच अप्रशस्त है। ये चार हमने जोड़ी देखी थी ना, कौन से, अग्र लघु उपघात परघात और उच्छ्वास, उसमें उपघात है वो अप्रशस्त है, अपना ही घात करें ना वो अप्रशस्त है, और अग्र लघु परघात और उच्छ्वास ये प्रशस्त प्रकृतियां, आतप और उद्योग ये प्रशस्त है, प्रशस्त व्यायगति नाम से वो प्रशस्त समझ में आ जाती है। त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक ये प्रशस्त प्रकृतियां है, इसके अगेंस्ट स्थावर साधारण अपर्याप्त सूक्ष्म ये कैसे अप्रशस्त है। ये जो छह प्रकृतियां बताए ना, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय यशस कीर्ति, ये प्रशस्त है, अब इनके जो जोड़ीदार है वो छह अप्रशस्त होगी। निर्माण और तीर्थंकर ये प्रशस्त होगी, तो ये 68 प्रकृतियां भेद विवक्षा से, भेद क्यों, क्योंकि वर्ण गंध रस स्पर्श बंधन संघात सबको अलग अलग गिने थे, तो 168 हो जाएगी। भेद विवक्षा से प्रशस्त यानी पुण्य रूप है। अभेद विवक्षा करेंगे पांच बंधन पांच संघात और ये एक्स्ट्रा 16, 20 के बदले हम 4 गिनेंगे तो ये 26 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी टोटल प्रशस्त प्रकृतियां, 42 हो जाएगी। 81 नंबर पृष्ठ पर एक टेबल बनाए, देखो यहाँ प्रशस्त प्रकृतियों में भेद से भी बताया है और अभेद से भी बताया है, 68 और 42, ये समझ में आई बात, बहुत हैवी हो रहा है क्या। अब अप्रशस्त प्रकृतियों को गिनेंगे,
भेद अभेद इसमें क्या है,
भेद अभेद यानी वो बंधन संघात जुदे जुदे कहे और वर्ण रस गंध स्पर्श के वो 20 बताए, तो ये भेद करके बताए और उन्हीं को हमने बंधन और संघात को शरीर में इंक्लूड कर दिया और 20 के बदले वर्ण रस वगैरह वो 4 ही बताए, वो अभेद से कहेंगे, यानी 68 के बदले हमने 42 गिने वहां पर।
अब
अप्रशस्त में नहीं लेते, वो प्रशस्त प्रकृतियां है, ही वो प्रशस्त प्रकृतियां
है,
परघात ये प्रशस्त प्रकृति है और उपघात ये अप्रशस्त प्रकृति। अब जो नियम लागू होते हैं ना वो प्रशस्त अप्रशस्त के, उसमें भी लागू होते हैं सारे, कहाँ कौन सी बनती है, कहाँ उसका अनुभव कितना बनता है, क्या है, उसके अनुसार ये सब है। अब अप्रशस्त गिनने हैं तो 47 के 47 पहले अप्रशस्त कर दो। अभी हमने जो साता असाता देखे थे, असाता का तो अप्रशस्त में लेना है, चार आयु में से एक नरक आयु है वो अप्रशस्त है, अब निज गोत्र अप्रशस्त है, अभी नाम कर्म के बाकी गिना, नाम कर्म में हमने देखा था गति में दो दो की बात की थी, जाति में चार है वो अप्रशस्त है ना, गति जाति शरीर एक भी नहीं लेना उसमें अप्रशस्त में, ना अंगो पांग लेना है। अब प्रशस्त में हमने 20 वो स्पर्श रस वगैरह के लिए थे, यहाँ पर भी अशुभ 20 लेना है, यानी दोनों जगह, नहीं तो आप कहेंगे बाद में टोटल कुछ मेल नहीं खाता है। देखो 81 का टेबल देखो, यहाँ 68 कही थी भेद रूप से, और अप्रशस्त में भेद रूप से जैसे 100 है वो उदय और सत्ता की अपेक्षा, और 98 है वो बंद की अपेक्षा। अगर उसको अगर हम गिनेंगे, वहां 148 हमने देखे थे, और 100 और 168 हो जाते हैं, 148 के बदले 168 हो गए, क्योंकि वो 20 जो है वर्ण रस वो हमने दोनों जगह की थी, शुभ में भी शुभ वर्णादि, अशुभ में अशुभ वर्णादि। नहीं तो ऐसे मेल नहीं खाता ना, उसका हिसाब नहीं होता बराबर। हाँ तो अभी हम गिन रहे थे अप्रशस्त वर्णादि, एक संस्थान हमने शुभ में डाला तो बाकी 5 अप्रशस्त में, एक सहनन हमने शुभ में डाला प्रशस्त में, बाकी 5 अप्रशस्त में आ जाएंगे। अग्रो लघु वगैरह में से उपघात को हमने नहीं लिया था वहां पर, उसको यहाँ पर लेना, अप्रशस्त में उपघात को ले लेना, अप्रशस्त विहार गति इधर लेना, बाकी वहां त्रसव आदर पर्याप्त प्रत्येक लिया था, उसके अगेंस्ट यहाँ लेना, स्थावर है अपर्याप्त है सूक्ष्म है साधारण है, वो इसमें ले जाए, वहां स्थिरादि सब लिए थे, यहाँ अस्थिरादि सब ले। इस तरह से ये प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद है। देखो ये टेबल बनाया 81 पेज पर, अभी तो हमने प्रशस्त प्रकृतियां गिनाई थी और अप्रशस्त भी गिनाई, तो यहाँ उसकी टोटल भेद अपेक्षा 68 लिखी है, अभेद अपेक्षा प्रशस्त प्रकृतियां 42 बताई है, अप्रशस्त में 98 है, ये 98 बंध रूप है, और क्योंकि उसमें वो समय मिथ्या और समय प्रकृति नहीं गिनते हुए 98 का, उसको गिनेंगे तो 100 हो जाएगी, और अभेद रूप से उसको 82 लिखा है वो बंध रूप है, और 84 है वो उदय और सत्ता की अपेक्षा हो जाएगी उसे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 45 की टीका है ना, यहाँ कषायों का कार्य कहेंगे, अभी ये अनंतानुबंधी आदि जो है उसकी जाति जुदी जुदी है, उसका कार्य यहाँ बता रहे हैं। अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त्व का घात करती है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश चारित्र का घात करती है, प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल चारित्र का घात करती है, और संवलन कषाय यथाख्यात चारित्र का घात करती है, इसलिए सार्थक गुण सहित नाम के धारक है। अभी उसी को यहां बताते आगे, अनंत संसार को कारणभूत होने से अनंत अर्थात मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का एक दूसरा नाम है अनंत, अनंत संसार का कारण है उसको अनंत भी कहते हैं, और उसको अनुबंधनती अर्थात संबंध रूप करता है वह अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यान अर्थात ईशत यानी देश चारित्र उसे कशंत यानी घातते हैं, उसको अप्रत्याख्यान, हम उसको अप्रत्याख्यान शॉर्ट में बताते हैं, उसका पूरा नाम है अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यान यानी अनुव्रत हम कहेंगे, किंचित त्याग उसको नहीं होने देते वो अप्रत्याख्यानावरण, परंतु हम उसको शॉर्ट में कह देते हैं अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन, इस तरह से उसको बोल देते हैं। ऐसे ही संज्वलन का अर्थ किया उन्होंने, सम यानी संयम के साथ ज्वलंत यानी प्रकाश रूप रहता है, यानी उसके साथ संयम भी प्रकट रहता है, उसको संज्वलन कहते हैं, यानी उसके नाम ऐसे ही पड़े हैं जैसा उसका कार्य होता है। देखो ये बात आगे भी कहीं आएगी कि पहले गुणस्थान में हम अनंतानुबंधी की मुख्यता से बात करते हैं, सम्यक को नहीं होने देता, परंतु पहले गुणस्थान वाले के किस किस का उदय है, क्या अकेले अनंतानुबंधी का है, सबका है ना, यानी जब उसको क्रोध हो रहा है तो अनंतानुबंधी क्रोध और प्रत्याख्यानावरण क्रोध प्रत्याख्यानावरण संज्वल सब चारों प्रकार का क्रोध का उदय है, तो अन्य तीन भी अनंतानुबंधी जैसा कार्य कर रहे हैं, ये महत्व की बात है, क्योंकि उसके बहुत तीव्र अनुभव का उदय है वहां पर, अनंतानुबंधी के साथ जब उदय में है तो अनंतानुबंधी जैसा उनका कार्य हो रहा है, चौथे गुणस्थान वाले को हम अप्रत्याख्यान की मुख्यता से बात करते हैं, पर वहां के प्रत्याख्यान और संज्वलन कैसा कार्य कर रहे हैं, अप्रत्याख्यान जैसा कार्य कर रहे हैं। पांचवे गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण का कार्य है तो संज्वलन भी उसका वैसा कार्य कर रहा है, क्योंकि उसका देशघाती का उदय जाके छठे सातवें में होगा स्पर्धकों का। नीचे के गुणस्थानों में उसका बहुत तीव्र अनुभव का उदय है तो वो अन्य जैसा उसका कार्य चलता है। पहले गुणस्थान वाला संज्वलन भी उसको सम्यक को नहीं होने दे रहा है। ये कर्मकांड में आगे कहीं ये गाथा है, उसमें जब आएगी तो हम बताएंगे आपको। और ये यानी खास बता है इसे, उसका कार्य ऐसा है। अन्य भी इसमें बातें आती कि किसी कषाय का वासना काल क्या है, जैसे अनंतानबंदी का वासना काल कितना बढ़ते तो भोग भवन तक भी चलता है, तो क्या वो क्रोध किया तो क्रोध रूप ही इतने सालों तक क्रोध रूप ही रहेगा, क्या होगा उसको मान माया लोभ रूप नहीं होगा क्या, उसकी बात यहाँ करते। उसको वासना काल किसको कहना, देखो यहाँ बताया 40 की टीका में, उदय के अभाव होने पर भी, देखो किसी कषाय का उदय तो अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहेगा, क्रोध पलट कर मान माया लोग वो आपस में बदलते रहते हैं, कोई भी एक कषाय कायम नहीं रहता। हम तो किसी को लेबल लगा देते ये लोभी है और ये तो क्रोधी है करके। वो देव हो या नारकी हो, मनुष्य हो या तीर्यंच हो, चारों ही कषायों का पलट हर अंतर्मुख में नियम से उसका बदलना पलटना होता ही होता है। और भले किसी कषाय रूप से भी उदय क्यों ना हो, क्रोध हो मान हो माया हो या लोभ हो, बंध तो सबका होता है। क्रोध करने वाले को भी क्रोध मान माया लोभ सबका बंध है। अभी हमने देखा मिथ्या दृष्टि है तो उसका क्रोध है ने, उसके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयुलन चारों ही क्रोधों का उदय है और उसको बंद हो रहा है 4 चौक 16 का, तो कौन सा करना अच्छा है, क्रोध के लोभ के माया के मान, बंद सबका चल रहा है उसका। अभी वासना किसको कहते हैं, तो उदय के अभाव होने पर भी कषाय का संस्कार जितने काल तक रहता है उसका नाम है वासना।
इसमें उदय
का अनुभव है अभी क्रोध से मिटकर वो मान माया लोभ रूप परिणमता रहेगा, जैसे अभी आगे बताएंगे। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति हमें बहुत क्रोध आया, तीव्र क्रोध आया, और फिर बाद में हम मान माया लोभ अन्य भी हम, पर उस पर्टिकुलर जिसके प्रति हमें क्रोध आया है उसके प्रति क्षमा भाव रूप नहीं होता, वो तो वासना काल में वो भवन भवन तक चलता रहता है। हमने देखा ना किसी की दुश्मनी तो अनेक भवन तक चलती है, ये जो कमठ और पार्श्वनाथ की बात आती है तो कितने भवन तक वो कमठ के मन में कितने भवन तक वो द्वेष भाव चलता है, उसको क्या कहेंगे, वो वासना काल कहेंगे। यानी कोई पर्टिकुलर इंसिडेंस कोई घटना होती है किसी के प्रति कोई भाव होता है मान रूप मान माया रूप जो कोई जिसका परिणाम, तो उस पर्टिकुलर जो उसके उत्पन्न हुआ था वो उसके मान है तो वो तो सरलता रूप नहीं परिणमिता, क्रोध है तो क्षमा रूप नहीं प्रवर्तता, तो ये जो बात है उसको कहेंगे उसका वासना। तो फिर पूरा पढ़ेंगे, उदय के अभाव होने पर भी कषायम का संस्कार जितने काल तक रहता है उसका नाम वासना काल है। संज्वलन कषायम का वासना काल अंतर्मूर्त मात्र है, यानी वो जो कुछ हुआ है वो ऐसा मन देगी तो मिट जाता है, उसके फिर बाद में वो कुछ बातें नहीं रहेगी। प्रत्याख्यानावरण कषायम का 15 दिन है, एक पक्ष है 15 दिन, अप्रत्याख्यानावरण कषायम का 6 मास है, अनंतानुबंधी कषायम का कितना है, संख्याद्भव असंख्याद्भव अनंत भव पर्यंत वासना काल है, इसीलिए उसको अनंतानुबंधी भी कहते हैं। जैसे किसी पुरुष ने क्रोध किया, ये समझा रहे अपनी भाषा में, अपनी पश्चात क्रोध मिटकर अन्य कार्य में लग गया, अभी वो तो जो कोई क्रोध हुआ था वो तो मिट गया, अन्य बातें चल रही है उसकी, जो रूटीन अन्य बातें चल रही है, वहां क्रोध का उदय तो नहीं है परंतु वासना काल रहता है, इसलिए जिस पर क्रोध किया था उससे क्षमारूप भी नहीं प्रवर्तता, उसके प्रति उससे क्षमा भाव नहीं है, तो दशलक्षण के बाद वो क्षमावाणी क्यों करते हैं, और वो भी किससे मांगते हैं, अपने मित्रों से, जिसके साथ क्रोध रूप परिणमित हुए थे उसके साथ तो जाकर नहीं कहते ना, हमने आपको क्षमा कर दिया, ऐसा तो नहीं कहते। क्यों? क्योंकि तीन बार तो आता है ना, तो साल भर तीन बार अगर हम करेंगे वो क्रोध मान माया लोग जो कुछ है, वो केवल कहने से नहीं होता है। अगर कह भी दिया और अंदर वासना, ये वासना वाली बात रह गई, उसके प्रति अगर क्षमा भाव नहीं है तो वो क्रोध का परिणाम चल रहा है, उसके प्रति उसका वासना काल चल रहा है, ऐसा कहेंगे। तो ये अभी हमने इसमें प्रशस्त और अप्रशस्त कर्मों की भी बात देखी। अभी इसको और भी, उसके उदय कैसा होता है, किसमें फल मिलता है, उसके अनुसार यहाँ उसको विपाक यानी कर्मों का फल, उसका उदय, कर्मों के उदय में उसका फल मिलना, इसी को कहेंगे कर्म का विपाक होना, उसका फल मिलना। वो किस रूप से मिलता है उसके अनुसार इसके चार भेद किए जाते हैं।
चारित्र गुण की एक ही समय की विभाव पर्याय है, उसमें समझो लोभ के परिणाम की पर्याय है, तो लोभ परिणाम की एक पर्याय के काल में भी वही पर्याय में क्रोध का संस्कार बैठा हुआ है, वही बता रहे
हैं। हाँ, यही बता रहे हैं, क्योंकि क्रोध तो मिट गया और अन्य कार्य रूप प्रवर्तने लगा, अन्य कार्य में तो उसके लोभ मार अन्य भी हो गए ना, और अन्य भी क्रोध भी हो गए, उस पर्टिकुलर के प्रति क्रोध कर दोगे। जैसे किसी बच्चे के या कोई अपना मित्र है और उसने अपना कोई बहुत नुकसान किया, उसके प्रति हम क्रोध रूप प्रवर्तन हो गए। अभी वो तो नहीं है सामने या कुछ नहीं है, हमें तो डेली रूटीन अपना चल रहा है, उसमें भी कभी क्रोध मान माया लोभ रूप हो रहे हैं, तो वो वाला क्रोध जिसके प्रति था उसके प्रति वो क्षमा रूप नहीं हुआ, उसको कहेंगे उसका वासना। यानी कर रहा है अभी मान माया, ये उस पर्टिकुलर क्रोध का संस्कार चल रहा है, उसकी वासना चल रही है। अभी कर्म के उदय के अनुसार ये सभी जो हमने देखे घाती अघाती, उसको चार पद्धति से चार भेदों में विभाजित करते हैं, किसमें उसका फल मिलता है उसके अनुसार। कि जीव के गुणों के साथ उसका निमित्त बनता है, कि शरीर आदि के साथ उसका बनता है, यानी पुद्गल में उसका फल मिलता है, या भव संबंधी उसका है, या क्षेत्र संबंधी है, ऐसे उसके चार भेद बताए जाते हैं। आपके पास चार भी यहाँ पर भी चार लगाए कि कर्मोदय के अनुसार इन प्रकृतियों के भेद गिनाए हैं यहाँ पर। वासना जरूर नहीं इतने लंबे रहे, जल्दी भी हो जाए, परंतु ये रह सकता है उसका, इतने बहुत संख्यात संख्या के अनंत भवन तक भी रह सकता है। हाँ, चल सकता है ना, अनेक जीवों के प्रति भी रह सकता है, यानी वो मंद अनंतानुबंधी भी मंद से तीव्रता तक अनेक भेद है। अनंतानुबंधी जो कषाय है अत्यंत, जैसे शुक्ल लेशा वाला है, द्रव्यलिंगी है, ग्रवेक में जाने वाले, मिथ्या दृष्टि है, तो उसका अनंतानुबंधी है कि नहीं है, वो कितना मंद वाला होगा, और अत्यंत तीव्र वाला भी अनंतानुबंधी होगा, तो उसमें डिफरेंस है ना, उसका अनुभव किस रूप से है और उसकी फलदान शक्ति कितनी है, या उसमें जो वेरिएशन है, इतने उसमें असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो सकते हैं, परंतु उसका नाम क्या है, अनंतानुबंधी। हम तो बाह्य में कितना वो ज्यादा क्रोध करता है कि कम करता है उसके अनुसार उसको नाम देते, वैसा नहीं है ये, जो सम्यक तो नहीं होने दे रहा है अनंतानुबंधी, वो जो कुछ राग के जो स्वामित्व बना है, जो कुछ है उसमें, उसको अनंतानुबंधी नाम देंगे। मिथ्यात्व के साथ साथ वो चल रहा है, मिथ्यात्व जैसा कार्य करता है, तो यहाँ हम ये उसमें विपाक किसमें होता है उसके अनुसार इसके चार भेद बताए गए। हाँ, राग में भी चलेगा वासना काल, वो अनंतानुबंधी का होगा। अब रामचंद्र जी को अनंतानुबंधी नहीं कहेंगे आप, समय दृष्टि है तो उसका छह महीने से ज्यादा वासना काल नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे कषाय ही नहीं उत्पन्न होगी कि जितना वासना इतना लंबा चले। यानी जो पर्टिकुलर समय में उत्पन्न हुआ है वो छह महीने के अंदर खलास हो गया, फिर नया नया होगा वो बात अलग है, उसकी लिमिट तो छह महीने की। इसमें चार भेद बताए, देखो जीव विपाकी यानी ऐसी कुछ प्रकृतियां हैं कि उनका फल जीव जीव के गुणों के साथ उसका निमित्त बनता है, उसको कहेंगे जीव विपाकी कर्म। पुद्गल विपाकी यानी उसका फल किसमें मिलेगा, पुद्गल। क्षेत्र विपाकी यानी विशिष्ट वो वहीं पर उसका फल मिलता है, जैसे आनुपूर्वी देखी थी हमने, आनुपूर्वी याद है जो मोड़ वाली गति से जाता है तभी वो आनुपूर्वी का उदय होता है, उसको क्षेत्र विपाकी है। और भव विपाकी जो चार आयु है वो भव विपाकी है। अब ये कौन कौन सी है उसको हम देखते हैं यहाँ पर पुस्तक के आधार से पढ़ेंगे हम। पहले में पहले पुद्गल विपाकी को बता रहे हैं, ये जो नाम कर्म की शरीर संबंधी जो प्रकृतियां वो तो सारे पुद्गल विपाकी तो रही है। देखो 83 पेज पर है, 83, पांच शरीर, पांच बंधन, पांच संघात, छह संस्थान, तीन अंगोपांग, छह सहनन, क्योंकि हमने इसके सबके कार्य देखे थे, वो शरीर की रचना संबंधी उसकी कौन सी जाति के परमाणु ग्रहण करता है उस संबंधी ये बातें, पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस और आठ स्पर्श, ये 50। और निर्माण, निर्माण में हमने देखा था ना वो स्थान निर्माण, प्रमाण निर्माण, यानी शरीर की रचना होती है, निर्मिति होती है। आतप उद्योत, स्थिर अस्थिर, क्योंकि वो तो धातु अपने रूप से रहते या पर रूप से परिणमते उसमें ये कार्य करता है। शुभ अशुभ, उसमें भी वो अवयव रमणीक होते हैं क्या नहीं वो उसकी बात की थी। प्रत्येक और साधारण, प्रत्येक शरीर का अर्थ क्या देखा था, एक जीव उसका एक शरीर, एक शरीर का स्वामी एक जीव, और साधारण में शरीर एक उसमें अनंत जीवन के लिए कॉमन। अगुरु लघु उपघात और परघात, ये 12, क्योंकि अगुरु में भी अगुरु लघु में क्या है, शरीर हल्का भारी नहीं होता है वो अगुरु लघु का, ये जो सामान्य गुण वाला अगुरु लघु वो अलग है, ये वाला कर्म जुदा है। उपघात भी और परघात भी, ये तो शरीर के नाश के कारण वाली बातें हैं। ये सब 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी है, पुद्गल ही में इनका उदय है। जैसे शरीर प्रकृति के उदय से पुद्गल ही शरीर रूप होकर परिणमता है, इसी तरह सब प्रकृतियों का स्वरूप जानना, ये यहाँ पुद्गल विपाकी गिन नहीं ना, नाम कर्म की 62 प्रकृतियां वही अभी हमने यहाँ गिन ली। अब जो भव विपाकी की बात करेंगे, चार आयु कर्मों की प्रकृतियां भव विपाकी है, क्योंकि मनुष्यादि पर्यायों में ही इनका उदय है। देखो मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, इसको पर्याय कहते हैं। चारों अनुपूर्वी क्षेत्र विपाकी है, क्योंकि जीव के परलोक गमन के क्षेत्र ही में इनका उदय है, वो भी मोड़ वाली गति में इनका उदय होगा, अन्यथा बनती तो है हर समय गति के साथ, अनुपूर्वी भी उसी नाम की बनती है, उदय मात्र ये विग्रह गति मोड़ वाली गति में होता है, रुजु गति से जाने वाले इसका उदय भी नहीं होगा। अवशेष रही 78 प्रकृतियां जीव विपाकी है, क्योंकि ये जीव की नरकादि पर्याय को उपजाने में कारण है, इसलिए जीव विपाकी कहते हैं। वो जीव विपाकी कौन कौन सी है अभी उसको देखेंगे। वेदने की 2, साता साता, क्योंकि जीव सुख दुख रूप परिणमता है उसके उदय में। गोत्र की 2, घाती कर्मों की 47, 51 तो ये हो गई, और नाम कर्म की 27। ये जो 78 प्रकृतियां हैं वो जीव विपाकी है। ये नाम कर्म की 27 कौन सी है उसको बताते हैं। देखो 50 की टीका पढ़ने से बदले हम 51 की पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें क्रम से नाम दिए हैं। ये चारों जो गति नाम कर्म है, जाति नाम कर्म सभी पांचों, उच्छ्वास, विहार गति, त्रस बांदर पर्याप्त के युगल, यानी उसको शरीर छोड़ दिया, प्रत्येक शरीर साधारण शरीर को छोड़ दिया, वो पुद्गल में लिया था, यानी विहाय गति के 2, त्रस के 2, बाधक के 2, पर्याय युगल लिए, ये 8 हो गए। शुभ का सुस्वर और आदेय और यशस की, स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ को छोड़कर बाकी 4 लिए, ये 8 प्रकृतियां। और तीर्थंकर, ये जो 27 प्रकृतियां है वो जीव विपाकी है। अब इसी का टेबल करके यहाँ पर बताया है। इस तरह से हमने ये प्रकृतियों के अलग अलग पद्धति से भेद देखे, जीव विपाकी है कि पुद्गल विपाकी है, प्रशस्त है कि अप्रशस्त है, घाती में सर्वघाती है कि देशघाती है, ये बहुत अलग अलग पद्धति से इनके हमने चर्चा की है। अभी हम यही रुकते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। बोलो 2400 भगवान।